हरे कृष्णा हरे कृष्णा, पीछे आवाज आ रही है। हरे कृष्णा, थोड़ी आवाज बढ़ा सकती है क्या? थोड़ी सी वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। जय राधा माधव कुंज बिहारी, माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जल वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जल वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदा नंदन भज जन रंजन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, जन्नति रावन चारी, जन्नति रावन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जल वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, जन्नति रावन चारी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। पाद परमहंस परिवगाचार अश्वत्तर श्री श्रीमद ऐसी भक्ति वेदान स्वामी शीले प्रभुपाद की जय। मिश्रपाद परमहंस परिवगाचार अश्वत्तर श्री श्रीमद ऐसी भक्ति वेदान स्वामी शीले प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की निदाय गौर प्रेम नंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 8 अध्याय 6 श्लोक संख्या है 39। ये इस अध्याय का आखिरी श्लोक है। कृपया मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा। अपर्योपम गिरिम स्कंधा अवरोप गिरिम स्कंधा उत्तरपणा पततम वराह उत्तरपणा पततम वराह यजो जालांत उत्सृज्य हरिणा सा विसर्जिता अवरोप्य गिरिम स्कंध उत्पुस्तृणा पतितं वरा यो जालांत उत्सृज्य हरिणा सा विसर्जिता। कोई एक प्रभु जी एक माता जी दोहरा सकते हैं? अवरोपम गिरिम स्कंध हरिणा सा विसर्जिता। माता जी अवरोप गिरिम स्कंध विसर्जित। शब्दार्थ मेरे पीछे दोहराए, अवरोप्य उतार कर गिरिम पर्वत को स्कंधात अपने कंधे से सुपर्णः गरुण पततां सारे पक्षियों में वरह सबसे महान या शक्तिमान ययो गया जलंते जहां जल है उत्सृज्य रखकर हरिणा भगवान द्वारा सह वह गरुण विसर्जिता उस स्थान से चला गया। तात्पर्य अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तत्पश्चात पक्षी राज गरुण ने अपने कंधे से मंदर पर्वत को उतारा और वे उसे जल के निकट ले गए। तब भगवान ने उससे उस स्थान से चले जाने को कहा और वह चला गया। तात्पर्य भगवान ने गरुण को उस स्थान से चले जाने का आदेश दिया क्योंकि सर्पराज वासुकी जिसे मंथन के लिए रस्सी बनाया जाना था गरुण की उपस्थिति में वहां नहीं जा सकता था। भगवान विष्णु का वाहन गरुण शाकाहारी नहीं है, वह बड़े बड़े सांप खा जाता है। वासुकी सर्पराज होने के कारण पक्षियों के नायक गरुण का सहज भोज्य होगा, अतएव भगवान विष्णु ने गरुण से चले जाने को कहा जिससे मथानी के रूप में मंदर पर्वत से समुद्र का मंथन करने के लिए वासुकी को लाया जा सके। ये सब भगवान की अद्भुत व्यवस्थाएं हैं। देववशात कुछ भी नहीं घटित होता। पक्षी की पीठ पर मंदार पर्वत उठाना और उसे सही सही रखना किसी के लिए भी कठिन होगा, चाहे वे देव हो या असुर, किंतु भगवान के लिए कुछ भी करना संभव है, जैसा कि इस लीला से स्पष्ट है। भगवान को एक ही हाथ से पर्वत उठाने तथा उनके वाहन गरुण को सभी देवों और दानवों को ले जाने में भगवत कृपा से कोई कठिनाई नहीं हुई। भगवान योगेश्वर कहलाते हैं क्योंकि वे सर्वशक्तिमान हैं। यदि वे चाहें तो किसी भी वस्तु को रुई से भी हल्का तथा ब्रह्मांड से भी भारी बना सकते हैं। जो लोग भगवान की लीलाओं में विश्वास नहीं करते वे यह नहीं बता सकते कि घटनाएं किस तरह घटित होती हैं। देव या संयोग जैसे शब्दों का प्रयोग करके वे अविश्वसनीय विचारों की शरण लेते हैं। कुछ भी आकस्मिक नहीं है, सब भगवान द्वारा किया जाता है, जैसा कि स्वयं भगवान भगवद्गीता में 90 अध्याय का 10वां श्लोक पुष्टि करते हैं। मया दक्षिण प्रकृति सुयते सा चराचरम। संसार में जितनी भी क्रियाएं या प्रतिक्रियाएं होती हैं वे भगवान की अध्यक्षता में होती हैं। लेकिन जब भगवान अद्भुत कार्य करते हैं तो असुरगण भगवान की शक्ति को नहीं समझते, अतएव वे सोचते हैं कि वे आकस्मिक हैं। इस प्रकार श्रीमद्भागवत के 8वें स्कंद के अंतर्गत देवताओं तथा असुरों द्वारा संधि की घोषणा नामक 6ठे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। ओम अज्ञानान्ति मिरांधस ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुलिङ्गायते गिरिं यदि कृपातां हं वन्दे श्री गुरुदीनतारिणं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत ही सिंपल और सरल तात्पर्य है, आशा आप सबको सुन के समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है श्रीमद् भागवतम सत्र में, वो भी इस्कॉन वृंदावन मंदिर में। वैसे भागवत सुनना अपने आप में एक सौभाग्यकारी कल्याणकारी कार्य है, किंतु इस्कॉन वृंदावन के श्री कृष्ण बलराम मंदिर में जहाँ इतनी बढ़िया व्यवस्था की है मैं प्रबंधन ने, ऐसी लगे हैं इतने सारे गर्मी के अंदर आराम से कथा सुने, कथा के बाद प्रसाद भी है, तो ये सुविधाओं के लिए हमें प्रबंधन का धन्यवाद देना चाहिए। हालांकि श्रीमद् भागवतम जो है एक ऐसा विषय वस्तु है कि जिसको हर कोई व्यक्ति, खासतौर से मुझ जैसा व्यक्ति इसका वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी पहली शर्त यह परम नित्म सरणाम सताम। श्रीमद् भागवतम बेसिकली उन लोगों के लिए है, इसका आनंद जो उठाते हैं वो उठाते हैं जो ईर्षा से पूरी तरह मुक्त हैं, जो भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से पूरी तरह परे हैं। किंतु फिर भी एक ऐसा व्यक्ति जो कि आपके सामने समाव बैठ गया और जो भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों में सर से पांव तक ओतप्रोत है, चार दोष भी हैं, लेकिन सेवा थोड़ा कुछ को टूटा फूटा कहने का प्रयास करेंगे। तो ये जो श्लोक है ये अध्याय का सबसे आखिरी श्लोक है, तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम ये सोच रहे हैं कि कुछ भक्त आप लोग अधिकतर तो काफी समय से सुन ही रहे होंगे, लेकिन कुछ जो अभी भी सुनना चालू किए हैं, कुछ आज ही आए हैं, या जिन्होंने पुराना सुना है उनकी भी एक पूरी पुनरावृत्ति हो जाए। तो हम पूरे जो अध्याय है 39 श्लोकों को सबको कवर करने का प्रयास करेंगे नियत समय सीमा के अंदर। तो आप सबसे अनुरोध है कि आशीर्वाद दें अपना, गोड़ाकेश प्रभु सामने बैठे हैं, बहुत वरिष्ठ भक्त हैं, मैं तो बच्चा हूं उनके सामने, अपना आशीर्वाद दीजिएगा कुछ कह सकूं। तो इसका दृश्य कुछ इस तरीके से प्रारंभ होता है कि एक बार, जैसा आप जानते हैं कि दुर्वासा मुनि वैकुंठ लोक गए, वैकुंठ यानी भौतिक जगत का जो वैकुंठ है वहां पे गए, भगवान के दर्शन करके आ रहे थे और पुरस्कार स्वरूप उनको भगवत प्रसादी माला मिली भगवान की। वहां से वो आ रहे थे और रास्ते में उनको कौन मिल गए, इंद्रदेव, जो अपने काफिले के साथ जा रहे थे अपने ऐरावत हाथी पे बैठकर। सब एक वैष्णव का स्वभाव होता है कि उसकी ये एक इच्छा रहती है कि जब मैं कुछ कृपा लूं तो दूसरों भी कृपा दूं। एक वैष्णव कृपा को अपने साथ संचय सीमित नहीं कर देता, कृपा का वितरण करता है। इसी भाव से उन्होंने ये माला इंद्रदेव को दी, लेकिन संभाव कुछ ऐसा हुआ कि इंद्रदेव जो है उस माला को सम्मान नहीं दे पाए और उन्होंने माला गले में लेने के बजाय यहाँ डाल दी हाथी के मस्तक पर। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोलते हैं कि जब हमें भगवान की प्रसादी माला मिलती है उसे कुछ समय तक पहने रहना चाहिए, और ऐरावत हाथी ने भी वो माला उठाई मस्तिष्क से और नीचे कुचल दी। और ये सब किसके सामने हुआ, दुर्वासा मुनि के सामने, और दुर्वासा मुनि का क्रोध तो आप सब जानते ही। बस यहीं से एक इस घटना से ये नया एक नया एपिसोड चालू हुआ, एक नई घटना चालू हो गई। तो दुर्वासा मुनि को क्रोध आया, दुर्वासा मुनि समझ गए कि इनको अपने पद का, अपने ऐश्वर्य का बहुत अहंकार है, और उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि तुम्हारा जो ऐश्वर्य है जल्दी नष्ट हो जाएगा। यही बात असुरों के जो गुरु हैं वो कौन है, शुक्राचार्य जी, उनको अपनी योग शक्ति से पता चल गई। उन्होंने तुरंत असुरों को बुलाया और बोला कि इस समय देवता कमजोर हो गए और यही सही समय है आक्रमण करने का स्वर्ग पर। असुरों ने, अब देवताओं की बात तो बहुत मानते हैं वो अपने गुरु की, उन्हें आक्रमण किया और देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया गया। तो देवता अपने घर में ही एक तरह से अनाथ हो गए, क्या करे, घबराए। देवता कहां जाते, जब यह संकट आता है तो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने शिव जी को लिया, सबके सब देवताओं को लेकर कहां पहुंचे, क्षीर सागर, जैसा कि हमेशा होता है आप सब जानते हैं। वहां गए, मां भगवान से प्रार्थनाएं करी, भगवान को अनेक तरह से अनुनय विनय किया और भगवान प्रकट हुए। तो पहले मैं इसका जितने श्लोक है 39 श्लोक उससे का वर्गीकरण करता हूं, विभाग, कि किस श्लोक में क्या क्या बताया गया है, तो आपको समझने में, इस अध्याय को समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो श्लोक क्रमांक 1 से लेकर 7 तक तो इस बात का वर्णन है कि किस तरह देवताओं ने प्रार्थनाएं करी और भगवान प्रकट हुए। फिर श्लोक क्रमांक 8 से लेकर 15 तक इस बात का वर्णन है कि ब्रह्मा जी ने जब भगवान को देखा तो भगवान ने प्रार्थना आरंभ करी, जो श्लोक क्रमांक 8 से 15 तक चलती है। अब जैसे आप सबने आपने सुना भी होगा कि जब भगवान प्रकट हुए देवता उनको देख नहीं पाए, क्यों? क्योंकि भगवान जब प्रकट हुए तो ऐसा रहा था कि मानो उनके देह से हजारों हजारों सूर्य के समान प्रकाश निकल रहा था। आचार्य भट्टिका में बताते हैं लेकिन कि विष्णु जी और शिव जी ने दर्शन किए उनके, तो उनको देख के ब्रह्मा जी ने प्रार्थनाएं करी। फिर श्लोक क्रमांक 16 से लेकर 26 तक भगवान विष्णु ने देवताओं को आदेश दिए किस चीज का, कि आप जो है समुद्र मंथन कीजिए, इस विषय में चर्चाएं बताई गई है। और फिर आखिरी विभाग जो है श्लोक क्रमांक 27 से लेकर 39 तक, जिसमें इस बात का वर्णन है कि किस प्रकार सुर और असुर ने मिले जुले प्रयास से समुद्र मंथन करने का प्रयास किया, मतलब मंदार पर्वत को लेकर आए, तो इन सबका वर्णन है। तो एक और दो मत इस बात की चर्चा आती है कि भगवान प्रकट हुए और देवता उनको दर्शन नहीं कर पाए लेकिन ब्रह्मा जी ने दर्शन किए उनके। फिर श्लोक क्रमांक 3 से लेकर 7 तक ब्रह्मा जी ने जो है उनकी भगवान के जो रूप था उसका वर्णन किया है, जैसा कि ब्रह्मा जी बताते हैं कि भगवान का जो शरीर था उसका रंग जो था मरकत मणि के समान था, भगवान की जो आंखें थी वो कमल के फूल का भीतरी भाग जो अंदर का हिस्सा होता है जो लाल कलर का होता है उस कलर के भगवान की आंखें थी, और भगवान जो वस्त्र पहने थे उनका रंग जो था जैसे कि पिघले हुए सोने की जो कांति होती है वैसे भगवान के वस्त्रों का रंग था, पीले वस्त्र थे, और उनका पूरा शरीर ही तरह तरह के आभूषणों से सुसज्जित था। जैसे भगवान के सुंदर मुस्कान के ऊपर एक मुकुट था, उस मुकुट पे बहुमूल्य रत्न जड़े हुए थे, भगवान की भौहें बहुत आकर्षक लग रही थी, उनके गालों पर कान पे भगवान के कुंडल थे जो कि शोभा बढ़ा रहे थे। किसकी? कुंडल भगवान की शोभा नहीं बढ़ा रहे थे, भगवान कुंडलों की शोभा बढ़ा रहे थे। और फिर शिव जी ब्रह्मा जी देखा कि भगवान के कमर में भी एक कमर पेटी लिखा है, इसमें तो वो बंधा था, बाहों में बाजू बंद थे, वृक्ष स्थल पे हार था, पाँव में पायल थी। आज भी हम सब ने भगवान के दर्शन किए होंगे, आस पास काफी लोगों को पता होगा भगवान ने क्या नीचे पहना हुआ है, कृष्ण बलराम ने, और मालाओं से उनका जो गला था वो अलंकृत था, गर्दन में कौस्तुभ मणि थी, लक्ष्मी जी भगवान के साथ थी, और चक्र गदा इत्यादि उनके आयुध थे। और ये सब देखकर शिव जी ने ब्रह्मा जी ने उनको प्रणाम किया, और फिर ब्रह्मा जी ने श्लोक क्रमांक 8 से प्रार्थनाएं चालू करी। बड़ी सुंदर प्रार्थना, इतना समय तो है नहीं, हम संक्षिप्त में जरा चर्चा करके आगे बढ़ेंगे। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि भगवान आप अजन्मा है, अजन्मा का अर्थ आप लोग जानते ही हैं। फिर वो बोलते हैं कि हालांकि आप अजन्मा है फिर भी अब इस भौतिक जगत में तरह तरह के अवतार लेते हैं, अवतरित होते हैं, और आपका प्रकट होना और अप्रकट होना एक चक्र के समान इस ब्रह्मांड में चलता रहता है, एक लीला खत्म हुई फिर दूसरे ब्रह्मांड में चली, इस तरीके से। फिर क्या है कि आप सदैव, हालांकि आप भौतिक जगत में प्रकट होते हैं लेकिन आप स्वयं भौतिक जगत के जो 3 गुण उनसे परे हैं, और आपके आपके अंदर स्वतः ही एक दिव्य आनंद का सागर है, बल्कि सारे मतलब आपको आनंद लेने के लिए आप किसी पर आश्रित नहीं है, आप स्वतः ही आपका जो स्वरूप है वो दिव्य आनंद का आश्रय है, और आप सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर हैं और आप अचिंत्य हैं। उस तरह से शिव जी ब्रह्मा जी प्रार्थना करके भगवान को प्रणाम करते हैं। फिर वो अगले श्लोक में श्लोक क्रमांक 9 में भगवान की सर्वज्ञता का जो गुण है, भगवान का सर्वज्ञता, उसका बखान करते हैं और बोलते हैं भगवान ये लोग बड़े ही है परम नियंता, जो लोग सचमुच परम सौभाग्य की कामना करते हैं वैदिक तंत्रों के अनुसार आपके इसी रूप की पूजा करते हैं, हे प्रभु आप में 3 लोकों को देखा जा सकता है। तो प्रवाही तात्पर्य में बोलते हैं यस्मिन विज्ञाते सर्वम विजातम भवती। और प्रभा जी बड़ी अच्छी बात भी कहते हैं कि व्यक्ति जब वह भगवान का साक्षात दर्शन करता है तो ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक वस्तु से अवगत हो जाता है। एक काफी एलिवेटेड, एक उच्च भक्त का लक्षण होता है कि जब वह भगवान के दर्शन करेगा तो ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु से वह अवगत है, वो संबंध बना पाता है कि किस तरह भगवान से संबंधित है और किस तरह यह वस्तु भगवान से संबंधित है। इस तरह फिर आगे चर्चा करते हैं, फिर वो आगे बोलते हैं कि आप भगवान आप ही आदि हैं, आप ही मध्य हैं, आप ही अंत हैं। और मैं उदाहरण देते हैं जो आप सबने सुना होगा, आप सब सुन चुके हैं, वो मिट्टी और मटके का उदाहरण देते हैं कि जो मिट्टी है वो कहाँ से आती है, पृथ्वी से आती है, मिट्टी से मटका बनता है, मटका कुछ समय के लिए रहता है, फिर मटका जब टूट जाता है तो मिट्टी वापस पृथ्वी में मिल जाती है। तो इसी प्रकार आप सृष्टि के पहले भी थे सृष्टि के अंत में भी है और मध्य में भी है, इस तरह सोना गुणगान चलता रहता है। फिर वो आगे बताते भगवान आपको कौन कौन देख सकता है। अभी देखिए हम भी भगवान के रोज दर्शन कर रहे हैं, देख तो हैं हम, लेकिन यहाँ पे जो बात बताई रही बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य में। वो बोलते हैं कि जो लोग कृष्ण भावना मत में बढ़े चढ़े हैं, मतलब ऐसे भक्त जो कृष्ण भक्ति में काफी हद तक प्रगति करके, मतलब कम से कम अगर मानते निष्ठा के ऊपर के लेवल की बात हो रही है, उससे नीचे की बात नहीं हो रही, तो कृष्ण भावना में जो बढ़े चढ़े हैं एक, और दूसरा बहुत महत्वपूर्ण बात, जो प्रामाणिक शास्त्रों से भली भांति परिचित हैं, जिनको शास्त्रों का बहुत अच्छा ज्ञान है, शास्त्रों का उनको आंशिक ज्ञान नहीं है कि शास्त्री को एक बात ली, एक पहलू को समझा और वही समझावट में खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। उनको किसी भी तत्व को, किसी सिद्धांत की जब जानकारी लेते हैं वो, तो उस तथ्य से, उस सत्य से संबंधित दूसरे जो पहलू हैं उनका भी उनको पूरी जानकारी रहती है, उनको सिद्धांत की पूर्ण समझावट होती है। और फिर वो क्या करते हैं, उनके जो हृदय है वो भौतिक कलमश से शुद्ध हो चुका होता है। भौतिक कलमश आप लोग सब समझ रहे होंगे, काम क्रोध लोभ इत्यादि जो अनर्थ है, इसमें अच्छे से बताया गया है मधुर कंदमनी में, तो उसकी चर्चा भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुल मिला के भौतिक कलमश से शुद्ध होते हैं। कैसे होते हैं, भौतिक योग के अभ्यास से। इस तरह से जो लोग हैं वो आपको साक्षात दर्शन कर सकते हैं, इस प्रकृति में कहीं पर भी भगवान को देख रहे हैं, इस प्रकृति में कहीं भी उनको सर्वत्र कृष्ण दर्शन हो रहे हैं। प्रभुपाद जी ने पुस्तक लिखी सर्वत्र कृष्ण दर्शन। फिर वो आगे जब बताते हैं, अब ये ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं वो, कि देखिए ऐसे जो बड़े बड़े लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, वो किस तरीके से सृष्टि में आपका दर्शन करते हैं। जैसे कभी कभी हमारे इस्कॉन के हरे कृष्ण भक्त बाहर जाते हैं, तो भाई बाहर के लोग ताला मारते हैं, अरे किन भगवान की पूजा करते हैं आप, भगवान को दिखाइए हमको, आप दिन भर महामंत्र का जाप कर रहे हैं, कहीं परिक्रमा कर रहे हैं, कि उस व्यक्ति की कर रहे हो जिसको आज तक किसी ने देखा ही नहीं है, आपने देखा है क्या। कभी कभी लोग सब तर्क देते हैं, तो ब्रह्मा जी यहाँ पर 5 एग्जाम्पल दे रहे हैं, अगर एग्जाम्पल हमने समझ लिए तो आज के बाद हम किसी भी व्यक्ति को स्नेह के साथ समझा सकते हैं कि किस तरह भगवान इस सृष्टि में नहीं होते हुए भी हैं और उनको देखा जा सकता है। इसमें चर्चा हम शायद एक बार कर चुके हैं, मैं एक बार आया था, तो इसमें 5 एग्जाम्पल, यहाँ थोड़ा सा हम रुकेंगे क्योंकि महत्वपूर्ण है। तो 5 एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है यथा अग्नि मेधस्य, अग्नि मेधस्य, अग्नि यानी अग्नि माने अग्नि और एधसी यानी काष्ठ यानी लकड़ी। तो ब्रह्मा जी आचार्यगण अपनी टीका में ही बताते हैं, इसको मैं भी बताऊंगा कि कोई व्यक्ति है जो अनजान है एकदम, उससे अगर कहा जाए कि लकड़ी में अग्नि है तो वो मान नहीं सकता, वो क्या कहे तो दिखाओ हम कैसे माने। साधारणता लोग यही कहते हैं ना, कलयुग के लोगों का जो देखेंगे वही मानेंगे, ऐसा कभी कोई लोगों का सिद्धांत होता है, तो अगर लकड़ी में अग्नि तो दिखाइए। तो हाँ, जो जानकार जो बड़े चढ़े भक्त है कृष्ण भावना व्रत में, वो बताते कि लकड़ी में अग्नि है, लेकिन उसकी एक युक्ति है, एक उपाय है, अगर वो उपाय आप करेंगे तो आप अग्नि के दर्शन कर सकते हैं। और वो उपाय क्या है, लकड़ी का कर्षण करना, आकर्षण करना, जब लकड़ी को रगड़ेंगे तो उसमें से अग्नि निकलेगी, चिंगारी निकलेगी। अभी अग्नि को बाहर से नहीं लाया जा रहा है, वो उसमें से ही निकली है, तो अग्नि है लकड़ी में। या फिर एक उदाहरण ले सकते हैं हम, अरणी एक लकड़ी होती है, आप लोगों को पता होगा, जिसके अंदर इग्निशियन मतलब है, उसके अंदर अग्नि को, अग्नि बहुत अधिक मात्रा में होती है, जरा सा घर्षण करेंगे तुरंत प्रज्वलित हो जाती है, अरणी से आप रगड़ेंगे अग्नि प्रज्वलित है एकदम। या फिर एक दिया चलाई, आप सबने देखी होगी, अभी दिया चलाई इसमें काली भी है और वो उसकी माचिस भी है, अभी देखिए दोनों तरफ मसाला लगा है, काली में भी मसाला है, माचिस में भी मसाला है। अभी कोई बोलेगा अग्नि कहाँ है इसमें, तो अग्नि कहीं दिख नहीं रही, अग्नि है, आप विधि अपनाइए, युक्ति अपनाइए, उसका घर्षण कीजिए, अग्नि प्रकट हो जाएगी। तो जिस प्रकार काष्ठ में अग्नि है लेकिन देखने की विधि है, उसी प्रकार भगवान इस ब्रह्मांड में सर्वत्र व्याप्त है, देखने की विधि है, और विधि का भी चर्चा करेंगे, आप लोग जानते ही होंगे। एग्जाम्पल तो ये, दूसरा है गोशु चा अमृतम, गोशु यानी गाय। तो गाय के दूध को प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि भौतिक जगत में यदि कोई अमृत है तो वो गाय का दूध है। क्यों, तरह तरह के रीजन है, शारीरिक बल को बढ़ाता है, हमारे मस्तिष्क की तंत्रिकाओं को पोषित करता है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि वो तो व्यक्ति की आयु बढ़ाता है, अमृत है वो। अभी किसी व्यक्ति को जो अनजान है, जिसको जानकारी नहीं, उसके सामने गाय का दूध रख दिया जाए, उससे बोलेंगे इसमें मक्खन है, मानेगा क्या, वो कहाँ है इसमें मक्खन, कहीं मक्खन नहीं इसमें तो। लेकिन जो जानकार है वो जानता है कि गाय में दूध में मक्खन तो है, उसकी विधि है, लेकिन अगर उस दूध का क्या किया जाए, मंथन करेंगे अगर हम, एक समय बाद उसमें से मक्खन प्रकट हो जाएगा। उसी प्रकार भगवान की एक विधि है, उसे उसका मंथन किया जाए तो उस मंथन से भगवान प्रकट हो जाएंगे। तो भगवान तो है, अभी आपको नहीं दिख रहे तो आप ये नहीं कह सकते कि भगवान नहीं है। तो इस तरीके से ये दो धारणा दी उन्होंने। तीसरा है भूमि च अन्नम, कि भूमि में हर जगह अन्न व्याप्त है, सब जगह अन्न व्याप्त है, कहीं भी आप देखेंगे अन्न व्याप्त है। लेकिन कोई पहला आदमी जो कोई दूसरे ग्रह से या धरती पर आया हो उसका आप बोलोगे भूमि में अन्न है, बोले कहाँ अन्न, अगर है तो ठीक है मैं खोदता हूँ थोड़ा बहुत खोदेगा 2-3-4 फीट, झूठ बोलते हैं आप, कहीं अन्न नहीं है यहाँ तो। लेकिन भूमि में अन्न है, लेकिन उसकी विधि है। अगर आप सही समय पर उसमें बीज डालेंगे, बारिश होगी तो आप देखेंगे भूमि में सरसों भी है, ज्वार भी है, फल है, फूल है, अनाज सब कुछ है, लेकिन उसकी विधि चाहिए होती है। विधि पता है तो आप देख सकते हो। फिर है भूविच अंबु, अंबु यानी जल, तो धरती में सर्वत्र जल है। अभी कोई नया आदमी को बोलो देखो नीचे जले तो वो मानेगा नहीं, बोला कहाँ जले, वो थोड़ा बहुत खोदेगा 4-5 बोलेगा झूठ बोल रहे हैं आप, यहाँ तो कहीं जल है ही नहीं, हमें तो कहीं जल दिख नहीं रहा है। लेकिन जो जानकार व्यक्ति है उसको पता है कि भूमि एग्जैक्टली कहाँ पर जल है, किस मात्रा में है, कहाँ पर स्त्रोत है, उसकी विधि है। विधि क्या है? खनन करना, उत्खनन करना उसको बोलते हैं। उत्खनन करेंगे सर्वत्र जल है, पानी मिलेगा आपको। देखिए वृंदावन में इतने बड़े बड़े फ्लैट बने हुए, 15-15-20 मंजिल माने के बने हुए हैं, और देखिए मनुष्य ने कैसे अपनी बुद्धि लगाई है कि वो धरती में जो नीचे जल है उसको लोग ओवर टैंक में डाला है और वो पानी सर्वत्र घरों में हर फ्लैट में जा रहा है। आप नल खोलेंगे जल मिलेगा आपको। तो विधि है। उसी प्रकार पांचवा एग्जाम्पल देते हैं, वृत्तिम च उद्यम ने च वृत्तिम। यदि किसी व्यक्ति को जीविका चलानी है, परिवार का पालन पोषण करना है, तो उसकी एक विधि है, उसको विधि अपनानी पड़ेगी तो पालन पोषण कर पाएगा वो। और विधि क्या है? उद्यम, प्रयास करेगा वो, व्यापार करेगा या कहीं नौकरी करेगा, जो भी कुछ भी करेगा, जब वो करेगा उसको धन मिलेगा, उससे वो जीविका चलाएगा। तो कहने का मतलब पांच एग्जाम्पल इस बात को बताते हैं कि भगवान इस सृष्टि में सर्वत्र विद्यमान है, और यदि कोई, लेकिन उनको देखने की विधि है, एक युक्ति है, एक उपाय है, और जो इस विधि को जानता है वो भगवान का दर्शन कर सकता है। वो विधि क्या है? जो भी व्यक्ति भगवान के गुण, नाम, रूप, लीला इत्यादि का मंथन करता रहता है निरंतर, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ऐसे मंथन चलता रहेगा तो उसी नाम से भगवान प्रकट होंगे, उसी गुण से, उस नाम से सब कुछ प्रकट होगा। या प्रहलाद महाराज 7वें स्कंद में बताते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, चर्चा हम लोग कर चुके थे, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, कि वो विधि है, नवदा भक्ति है। उस विधि को आप करते रहेंगे तो जिस प्रकार दूध से मक्खन निकला वैसे भगवान प्रकट होंगे। तो भगवान तो हैं। तो इसी बात को जो है ब्रह्मा जी गुणगान कर रहे हैं। अभी इस श्लोक की टीका में हमारे वैष्णवाचार्य श्री विश्वास चक्रवर्ती पाद एक बहुत सुंदर एक अवधारणा लेकर आए हैं, वो उसकी थोड़ी सी चर्चा मैं करूंगा। वो अपनी टीका में वो बताते हैं कि किस तरीके से वो इस अवधारणा के साथ आते हैं कि देखिए कृष्ण भक्ति में दो तरह के लोग आते हैं। कौन कौन? सबसे पहला वो जो इस जन्म में भक्ति प्रारंभ कर रहे हैं, जो इस जन्म में भक्ति प्रारंभ कर रहे हैं, और दूसरे वो जो कि इस जन्म में, जो पूर्व जन्म में भक्ति करके आए हुए हैं, ऑलरेडी उन्होंने पिछले जन्म में भक्ति करी हुई है। तो इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए उन्होंने 5 श्लोकों का 5 एग्जाम्पल का उदाहरण दिया है। मैं संक्षिप्त में बताऊंगा इसको। तो सबसे पहला उन्होंने उदाहरण दिया है किनका? जो लोग इस जन्म में भक्ति प्रारंभ कर रहे हैं। तो उसके लिए ये दो इस श्लोक से 2 एग्जाम्पल लिए, अग्नि मेधस्य, कि जिस प्रकार लकड़ी में अग्नि होती है, लेकिन जिस व्यक्ति को पता नहीं, वो नया है, उसे बड़ी कठिनाई आएगी अग्नि को जलाने में। उसी प्रकार जो साधक अभी अभी इस जन्म में कृष्ण भक्ति प्रारंभ किया हुआ है, उसको हरि नाम का जप करने में थोड़ी स्ट्रगल होगी, संघर्ष होगा, कभी कभी नींद में आएगी। हाँ, नाचना गाने में अच्छा लगेगा, कीर्तन में करना बड़ा अच्छा, लेकिन जहां शास्त्र अध्ययन की बात आई, जय भागवतम हाथ में आई, चालू हो जाएगा। जहां जप की बात आई, बाकी दूसरी जो जहां उसको रुचि है, नाचना है, गाना है, कीर्तन करना है, परिक्रमा में जाना है, जगन्नाथ रथ रहा, खूब आनंद आएगा उसको। क्यों? तो गलत नहीं है कुछ उसमें, अभी नया समय लग रहा है। जैसे जैसे वो, अभी दूसरा एग्जाम्पल देंगे वो, गोशु च अमृतम, ये एग्जाम्पल बहुत फिट बैठता है उसके लिए। कि देखिए हमने चर्चा करी कि गाय में दूध होता है, या गाय के दूध में मक्खन भी होता है, गाय के दूध में आचरण ये भी बताते हैं कि कई ऐसे भी लोग हैं जो इस बात को नहीं मानते गाय में दूध होता है, तो वो गाय को काट देंगे। उसको काटेंगे, उसका ब्लड निकालेंगे, गाय को काटेंगे तो क्या निकलेगा, ब्लड निकलेगा, हड्डी निकलेगी, इत्यादि निकलेगा, लेकिन दूध नहीं निकलने वाला। लेकिन जो जानकार उसको पता है गाय से दूध कैसे निकालना है, क्योंकि उसकी विधि वो जानता है, गाय को कब मिलाना है, कब उसको जब गाय दूध देगी तो गाय दूध देने में भी कठिनाई होती है कभी कभी, इतना आसान नहीं गाय से भी दूध निकालना अगर व्यक्ति नया है तो। लेकिन एक उपाय कर दिया जाए अगर तो गाय दूध बहुत आसानी से देगी, वो बिल्कुल दिल खोल कर देगी जितना वो देना चाहती है। और वो उपाय क्या है, हाँ, कि गाय के दूध से अगर आपको दूध निकालना है तो गाय के बछड़े को सामने ला दो आप। जैसे ही गाय का बछड़ा गाय के सामने आएगा, वात्सल्य भाव में आने के कारण, ममता के कारण, गाय माता पर्याप्त दूध देगी जितना दूध देना है। ठीक वैसे ही ये जो व्यक्ति जो अभी अभी नए भक्ति में आया हुआ है, अभी भी जिसने चालू करी, इस जन्म में भक्ति जिसने चालू करी है, मुझ जैसा एग्जाम्पल लीजिए, तो यदि उसको किसी योग्य प्रमाणिक साधु का संग मिल जाए, देखा ना, कृष्ण भावना अपने बढ़ा चढ़ा हो और प्रमाणिक शास्त्रों से भली भांति परिचित हो, यदि किसी ऐसे साधु का उसको संग मिल गया तो जितने उसकी भक्ति में बाधाएं आ रही हैं सब खटाखट दूर हो जाएंगी, भक्ति में तेजी से प्रगति करेगा, फिर जप में से रुचि आने लगेगी, फिर हरि कथा में रुचि आने लगेगी, फिर सत्संग में रुचि आने लगेगी। क्यों? साधु की कृपा से। ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद दे पाए भक्ति लता। ये श्लोक प्रभुपाद जिसके तात्पर्य में कोट करते हैं इसी संदर्भ में। फिर विशाल चक्रवर्ती पाद तीन एग्जाम्पल दे रहे हैं आखिरी के, वो किसके लिए बता रहे हैं, जो पूर्व जन्म में भक्ति करके आए हुए हैं। ये सुनिएगा, बड़ा रुचिकर है, बड़ा अच्छा लगा मेरे को एकदम। तो बताते हैं भूविच अन्नम, कि देखिए दो भूमि है, एक भूमि में बारिश गिरी तुरंत फसल आगे लहला आ गई, लेकिन एक भूमि में बारिश गिरी है तो अभी फसल आई नहीं है उसमें। क्यों ऐसा? क्योंकि उस भूमि में बीज पहले ही सही था, उससे बस सही समय का इंतजार था, जैसे पानी मिला बीज अंकुरित हो गए और फसल लहलहाने लगी। ठीक वैसे ही जिस साधक ने पिछले जन्म में भक्ति करी हुई है तो ऑलरेडी चूंकि भक्ति किया हुआ है वो, तो थोड़ा थोड़ा सा साधु संग मिलेगा और भक्ति में आगे बढ़ने लगेगा, वो प्रगति करने लगेगा वो। तो ये एक अच्छा स्तर है, लेकिन इससे भी एक अच्छा स्तर है, वो बता रहे कौन सा एग्जाम्पल, भूविचा अंबु की भूमि में जल भी है, जिसे हमने चर्चा करी है, भूमि में जल है, सर्वत्र जल है, लेकिन विधि पता है उसको तो व्यक्ति जल निकाल सकता है। ठीक उसी प्रकार जिसने पूर्व जन्म में भक्ति करी है उसको दी प्रमाणिक योग्य साधु का जो कृष्ण भक्ति में बढ़ा चढ़ा उसका संग मिल जाए, उसे थोड़ा सा भक्ति का रस, उसके संग से उसे भक्ति का रस आने लग जाएगा, भक्ति रस प्रवाह की धारा बहने लगेगी, और क्या होगा, उसकी भक्ति में जितनी भी बाधाएं आ रही है आचार्य कड़ा बताते हैं सारी दूर हो जाएंगी, जितनी बाधा उसको आ रही है वो सारी दूर हो जाएंगी, और वो भक्ति प्राप्त कर लेगा, भगवान की प्राप्ति कर लेगा वो, और भक्ति में बहुत तेजी से प्रगति करेगा। फिर वो एक तो सारे संघर्ष, उसकी स्ट्रगल खत्म हो जाएगी, भक्ति में बाधाएं हट जाएंगी और भगवत प्राप्ति करेगा वो साधु की कृपा से। और फिर सबसे आखिरी एग्जाम्पल जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है वृत्तिम च उद्यमने। तो आचार्य गण बताते हैं, अभी देखिए ये जो एग्जाम्पल है ये बहुत उच्च कोटि के साधक के लिए, मतलब ये समझिए कि एटलीस्ट निष्ठा से तो ऊपर है ही, वो हर स्थिति में निष्ठा से ऊपर हो चुका है, वो लगभग लगभग भाव भक्ति के स्तर पे है वो, जैसे भागवतम एग्जाम्पल है अपना जड़ भरत का, या प्रभुपाद जी के संस्था में शिष्य थे जयानंद प्रभु थे, या गुरुगोविंद स्वामी थे, तो ऐसा उनके बारे में उनको इंगित कर तो ऐसा बताते हैं कि कभी कभी ऐसा होगा कि कुछ भक्त जो भक्ति में बहुत बढ़े चढ़े हैं, बहुत अग्रसर है, लगभग लगभग कृष्ण प्रेम के निकट हैं, एकदम भाव जो भाव भक्ति है वो कृष्ण प्रेम से बस अगला ही स्टेज है, बहुत बड़े चढ़े हैं वो, तो वो क्या करेंगे, कभी कभी सांसारिक कार्य कर सकते हैं, जैसे कि ध्रुव महाराज थे, भगवान का दर्शन किए उन्होंने लेकिन राज कर रहे हैं। अभी किसी व्यक्ति से पूछो आप, क्या है भक्ति, भवन का नाम जप करना भक्ति है या राजकाज्य कार चलाना, राजनीति करना भक्ति है, क्या बोलेगा वो, नाम जप करना भक्ति, ध्रुव महाराज तो नहीं कर रहे। तो ऐसे भक्त को अच्छी तरह समझना चाहिए कि उसकी बाहरी क्रियाओं को देखकर जज नहीं करना है, वो उद्यम कर रहा है केवल किन्हीं कारणों से, बाकी उसका मन, क्योंकि वो भक्ति ऑलरेडी प्राप्त कर चुका है, वो उस स्तर पे है, जरा सा साधु संग मिलेगा भगवत दर्शन एकदम। तो इस तरीके से उन्होंने विश्वनाथ, काफी डिटेल में इतना समय नहीं है, तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अवधारणाओं को बताया था कि किस तरीके से जो है दो तरह के साधक भक्ति में आते हैं। फिर उसके बाद आगे बताते हैं कि भगवान जिस प्रकार के भगवान आपके दर्शन हुए हमें, तो भगवान के दर्शन का प्रभाव बता रहे हैं कि हे प्रभु, ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं मैं आपके दर्शन हुए, तो कैसे दर्शन हुए? जंगल में अगर आग लगी हो और हाथी निकल रहा है, अभी हाथी की खाल वैसी बहुत मोटी होती है, काले कलर की होती है, तो काला कलर का गुण है कि वो ऊष्मा को बहुत जल्दी अवशोषित करता है, तो चारों तरफ आग लगी और हाथी निकल रहा है, एकदम कितना कष्ट तकलीफ में होगा वो, कितनी जल्दी होगी उसको। ऐसे मुझे जिसे गंगा जल में स्नान करने को मिल जाए फिर क्या कहना है? तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं प्रभु आपके दर्शन ठीक वैसे हमारी आत्मा को सुख और शांति प्रदान कर रहे हैं, आपके दर्शन करके अनुग्रहित हो गए, वैसा हमें सुख और आनंद मिल रहा है। तात्पर्य प्रभा जी बड़ी महत्वपूर्ण बात बताते हैं, बोलते हैं कि देखिए भगवत भक्त भगवान का दर्शन करने के लिए आतुर तो बहुत रहता है, बहुत उत्सुकता रहती है इसको, भगवान का दर्शन करूं इसी जीवन में करूं, लेकिन वो कोई मांग नहीं करता है कि भगवान आपकी भक्ति कर रहा हूं तो मुझे आपको दर्शन होंगे ही होने ही, आप मुझे दर्शन दो, ऐसी इसकी मांग नहीं होती है कभी। हाँ, मन में अभिलाषा है, मन में इच्छा है, और जो शुद्ध भक्त होते हैं वो भक्ति तो ऑलरेडी कर ही रहे हैं, मन में उनकी आशा रहती है कभी भगवान कृपा करेंगे तो मुझे दर्शन होंगे, नहीं देते कोई बात नहीं, भक्ति तो चल रहा है ना, भगवान की सेवा तो चल रही है ना, आशीषवा पद्रताम प्रिंसिपल की बात होती है यहाँ पे। इस तरह से जो वो आगे ब्रह्मा जी आगे चल रहे हैं और फिर आगे बताते हैं कि ये प्रभु अभी मान लीजिए श्लोक क्रमांक 14 की हम बात कर रहे हैं, जब भगवान का इतना गुणगान करते हैं तो श्रीमद श्रीधर स्वामी भी अपनी टीका में बोलते हैं कि चलो मानो, भगवान बोले चलो ठीक है तुमने मेरा गुणगान कर लिया है, सब कुछ हो गया है, अभी तुमने प्रार्थना करी मैं आ भी गया, लेकिन अभी मुझे करना क्या है, मुझे क्यों बुलाया है आपने, ऐसा मानो कहें श्रीधर साई अपनी टीका में बोलते हैं। तो ब्रह्मा जी श्रीधर साई बोलते हैं, ब्रह्मा जी बड़ा अच्छा उनका बोलते हैं कि हे प्रभु आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप हमारे आने के प्रयोजन को पहले से ही जानते हो, क्योंकि आप क्या हो, अंतर्यामी हो, आप सब जानते हो, हम क्या बताएं, हमें अपनी परेशानी ठीक से नहीं पता अभी, तो हल्का हम आपको बताएंगे, तो आप ही हमें बताइए, हमारा मार्गदर्शन कीजिए, हमारे क्या प्रयोजन को आप जानते हैं और उसको दूर करने का हमें उपाय बताइए। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी की प्रार्थना चल रही है और फिर ब्रह्मा जी अपनी तुलना करते हैं देवताओं और भगवान की, वो तुलना करके बताते हैं कि देखिए भगवान आप तो अग्नि के समान हैं और हम देवी देवता जिसको सारा ब्रह्मांड हमारी पूजा करता है हमको उतना मानता, हम तो एक चिंगारी के समान है। चिंगारी किससे निकलती है? अग्नि से निकलती है, लपटों से आती है, चिंगारी एक आग का एक अंश है केवल, तो उतना अंतर आप में और हम में है। इस तरह से भगवान का गुणगान करते हैं तो श्रीधर साई टीका में बोलते हैं ठीक है, भगवान बोलेंगे चलो ठीक है अब तुम लोग ही कुछ करो, प्रयोजन तो मैं समझ आऊं लेकिन जो परेशानी उसका हल तुम ही कुछ निकालो। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि हमारी बुद्धि और हमारे बुद्धि को आप क्या लिखा है इसमें, हमारी बुद्धि को आप उससे कुछ महत्व मत दीजिए, हमें कोई इतनी बुद्धि नहीं कि हमारी परेशानी से आपका हल निकाल सके, आप ही हमारा उद्धार कीजिए और आप ही हमारी समस्याओं को, आप हमें समस्याओं के हल से बताइए, हमें हमें हल से निवारण कीजिए हमारा। फिर उसके बाद ये सब सुनने के बाद ये भगवान जो है उनके आने के प्रयोजन को समझ जाते हैं। प्रयोजन क्या था आने का? जो देवता गण ब्रह्मा जी गए थे, प्रयोजन था स्वर्ग की प्राप्ति करना। देवता का एक ही एजेंडा होता है हमें स्वर्ग की प्राप्ति करना, वो भगवान से भक्ति मांगने नहीं गए, हालांकि भक्त हैं, तो भगवान तंत्र अभी समझ गए कि इनको मेरे पास क्यों आए। तो फिर भगवान उनको क्या करते हैं, उनको समुद्र मंथन का आदेश दे दें, वो कि ठीक आप ऐसा कीजिए कि आप सभी देवता जो मेरे पास आए हो मैं आपके प्रयोजन को समझ गया हूँ और अब आप लोग जो है समुद्र मंथन को अंजाम दीजिए। तो हालांकि अनुवाद में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवान ने जो समुद्र मंथन करने का जो उनको हल दिया, जो सलाह दी, वो इस वजह से थी कि भगवान स्वतः ही समुद्र मंथन की लीला का आनंद उठाना चाहते थे, वरना वो दूसरे तरीके से भी देवताओं की समस्या को हल कर सकते थे। तो अपने आनंद को उठाने के लिए भगवान ने उनको मार्गदर्शन देना चालू किया और उनको बोला देवता को कि देखिए अभी अभी आपकी हालत खराब है, अभी आपका समय आपके अनुकूल नहीं है और इस समय आपको देवताओं असुरों से या दानवों से क्या करना चाहिए, संधि कर लेना चाहिए। तो थोड़ा अजीब सा लगा उनको देवताओं को कि अरे संधि, जैसा का सांप और नेवले की दुश्मनी, ऐसी बात हो गई। तो भगवान उनको बहुत अच्छा एक न्याय बताते हैं जिसको बोलते हैं सर्प मूषक न्याय। अर्योपी संध्या सती का अर्थ होगा अरे वह अहि मूषिका वे व अर्थस्य पदवे गते। तो वो उनको सर्प और चूहे का एक न्याय बताते हैं, लॉजिक वो इस तरह से है कि एक बार एक एक, एक पिटारी में एक सांप और एक चूहा बंद हो गए, अभी दोनों को बाहर निकलना है, चूहे को भी निकलना है सांप को भी निकलना है। चूहा भयभीत है एकदम, क्यों? अंदर साक्षात मौत है, सांप बैठा हुआ है, कभी भी खा लेगा, और निकलना भी है। सांप भी चिंतित है, निकलना मुझे भी, क्या किया जाए, चलो उसे खा भी लूंगा, अभी कुछ देर पेट भरा रहेगा, फिर भूख लगेगी, बाहर तो जाना है, आजादी सबको पसंद है, क्या करें? तो आवाज दे रहा हूं, क्या करें? तो सांप ने चूहे को एक सुझाव दिया, बोला चिंता मत करो, डरो मत, तुम्हारे दांत बड़े पहने हैं, तुम क्या करो, जो पिटारी है उसको काट लो, इसको काट लोगे तो तुम भी बाहर चले आना, मैं भी बाहर चले जाऊंगा। तो चूहा मान गया। तो इसको बोलते हैं कि जब कभी कभी ऐसा भी कहा जाता है चालू भाषा में कि वक्त खराब हो तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तो उसी तरीके से भगवान उनको बोल रहे हैं कि अभी समय तुम्हारे प्रतिकूल है, तुम्हारे अनुकूल नहीं है, तुम लोग कमजोर हो, देव असुर लोग भारी हैं, तुम उनसे संधि कर लो। तो चूंकि भगवान बोल रहे हैं और देवता भगवान के भक्त हैं, तो देवता उनकी बात को स्वीकार कर लेते हैं और भगवान फिर उनको बताएंगे सारी चीजें, किस तरह तुम्हें जाना है, क्षीर सागर में जाना है और तुम्हें संधि करनी है, तुम्हें विरोचन, जो बलि महाराज है विरोचन के लड़के, उनसे किस तरीके से बात करनी है। और वो उनको तीन चार चीजें बताते हैं कि देखो तुम वहां जाओगे तो डरना मत, एक लोभ मत करना, तीसरा क्रोध मत होना। तो डरना क्यों नहीं है भाई, हम तो संधि करने आ रहे, प्रस्ताव देने, डरना क्यों नहीं है? तो भगवान बताते हैं जब समुद्र मंथन करो, मतलब भगवान पहले उनको सारी योजना पूरा प्लान दे देते हैं कि क्या क्या होने वाला है। कालकूट नाम का जहर निकलेगा, विष निकलेगा, डरना मत उससे। और फिर जब मंथन होगा तो तरह तरह के समुद्र रत्न निकलेंगे और देवता उसकी डिमांड, असुर लोग उसको मांगेंगे, तो वो जब उसको लेंगे तुम रोष मत करना, वो जो चांद को लेने देना, तुमको अमृत मिलेगा ये मैं निश्चित है, वो असुर लोग जो मांगे उनको देते रहना, कहीं विरोध मत करना, क्रोध मत करना। और फिर सुंदर स्त्रियां निकलेंगी तो लोभ मत करना, लालच मत करना, लालसा में मत आना। इस तरह भगवान उन सबको समझाते हैं कि तीनों काम मत करना। और विष्णु चक्रवर्ती पाद भी बोलते हैं बात कि यदि व्यक्ति को अपने जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो उसमें एक बहुत बड़ी बाधा है और वो क्या है? क्रोध। अगर लक्ष्य पे फोकस होना, लक्ष्य पे केंद्रित होना, तो क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध कभी कभी काम खराब कर देता है। तो इस प्रकार की सलाह देकर भगवान जो है अदृश्य हो जाते हैं और अपने जो देवी देवता हैं, सुर असुर हैं, वो इंद्रदेव के निर्देशन में बलि महाराज के पास जाते हैं उनको अपना संधि प्रस्ताव देने के लिए कि हम दोनों मिलकर जो है प्रयास करेंगे कि मंथन करें। तो वो जाके बोलते हैं, सबसे पहले जाते हैं देवतों के बलि महाराज के पास, जो बलि महाराज की जो टीम थी, उनके जो बड़े बड़े मंत्रीगण थे, इनके नाम भी हैं इसमें शायद, नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा, निवाद का वच इत्यादि सब लोग वहां थे। तो वो तुरंत अटैक करने का प्रयास करते कि देवता मारने आए, मैं बलि महाराज बुद्धिमान थे, उन्होंने देखा कि इनके पास हथियार नहीं है, बोलते नहीं रुक जाओ, देवता आते, इंद्रदेव बैठते हैं, दोनों के सामने बिठाते हैं। तो इंद्रदेव ठीक जैसा भगवान विष्णु ने बताया था वैसा वैसी उनको प्रस्ताव देते हैं कि देखिए हमारा लड़ाई झगड़ा तो अपनी जगह है, कुछ समय के लिए हमको लड़ाई झगड़ा छोड़कर हमें समुद्र मंथन करना चाहिए, अमृत मिलेगा, आधा आधा दोनों बांट लेंगे, दोनों अमर हो जाएंगे। अभी यहां पर पॉलिटिकल इश्यू आता है कि देखिए देवता भी एक तरीके से चाल चल रहे हैं असुरों के साथ संधि प्रस्ताव की, और असुर लोग भी सहमत हो गए हैं, वो भी चाल चल रहे हैं, क्योंकि बलि महाराज और उनकी टीम ने सोचा अच्छी बात है, ये हमारा सहयोग कर देंगे, अमृत मिलेगा, हम इसको लेके इनको मार देंगे, तो वैसे कमजोर हैं, इनका समय वैसे खराब चल रहा है। और देवता क्या सोचते हैं, इनकी सहायता लेंगे, ये जो मांगे जैसा भगवान ने बताया इनको देते रहेंगे, अमृत जब आएगा अमृत हम ले लेंगे, हम अमर हो जाएंगे। इस प्रस्ताव के साथ दोनों मिलते हैं, दोनों ही अपनी अपनी कूटनीति होती है और दोनों तैयार होते हैं कि चलो भैया ठीक है हम जो है समुद्र मंथन करेंगे। अब समुद्र मंथन करने के बाद जाते हैं वहां पर, कहा भगवान ने बताया था कि समुद्र मंथन करोगे तो मंथन के लिए क्या चाहिए, मथानी चाहिए, मथानी क्या बनेगी, मंदार पर्वत, रस्सी चाहिए होती, रस्सी कौन बनेगा, सर्पराज वासुकी बनेंगे। अभी देखिए मंदार पर्वत क्षीर सागर से बहुत दूर है, अगर आपने पांचवा स्कंद पढ़ा होगा उसमें एग्जैक्ट मुझे अभी ध्यान नहीं डिटेल, लेकिन वो काफी दूर है वहां से, उसमें जम्बू द्वीप के विषय में पूरा बताया गया है, पूरा डिटेल है उसके अंदर, तो वहां से काफी दूर है। लेकिन जैसे ही लोग सुनते हैं सारे सुर और असुर, विशेष असुर लोग बड़ा उत्साही हो जाते हैं, अरे वाह क्या बात है, अमृत मिलेगा और हमारा राज चलेगा, उत्साह में आते हैं एकदम और चलो चलते हैं। और दोनों मिलकर जाते हैं मंदार पर्वत को उठाने के लिए। अभी मंदार पर्वत बहुत भारी पर्वत है, लेकिन इनका वर्णन आता कि जो देवता और असुर लोग थे ये बहुत बलशाली थे, उनकी भुजा में बहुत ताकत थी, बलशाली थे एकदम वो, और बिल्कुल जोर लगा से हैया करते हुए मंदार पर्वत के पास जाते हैं और पूरी शक्ति लगाकर उसको उठाने का प्रयास करते हैं, उसको उठाते हैं। अभी किसी बाहर के व्यक्ति को जाके आप बोलेंगे ये कैसे मानदार पर्वत उठा सकते हैं, वो विश्वास नहीं करेगा वो, लेकिन भगवान के भक्त करते हैं। तो ये दोनों गए वहां पर, क्योंकि विष्णु की इच्छा थी कि समुद्र मंथन हो, असुर देवता को शक्ति मिली कि उन्होंने उठाया पर्वत को, पर्वत को उठाया गया, उठा के ला रहे थे। शुरू में तो बड़ी ताकत आ रही थी इनको, चलो ले चलेंगे ले चलेंगे, लेकिन धीरे धीरे उनके हौसले पस्त होने लगे, थक गए। अभी देखिए कोई बोल भी नहीं रहा है कि हम थक गए, क्यों, अपनी प्रेस्टीज है ना, लेकिन धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे, शिथिल हो गए। कुछ बताते हैं कुछ असुर, कुछ देव असुर और असुर तो उसमें चुरई बन गए, कुछ के जो बचे थे उनके हाथ पांव टूट गए, जख्मी हो गए, तो बड़ी बुरी हालत एकदम हो गई। भगवान ने देखा उनको, अरे इनकी तो ये हालत हो गई है। भगवान वहां पर आए, करुण के साथ आए, और आने के बाद भगवान ने क्या किया, बिल्कुल सहजता के साथ, सरलता के साथ अपने एक हाथ से नाइकल मंदार पर्वत को उठा के गरुण पर रखा। नहीं, सबसे पहले भगवान जब आए तब भगवान ने अपनी कृपा दृष्टि डाली, जब कृपा दृष्टि डाली तो जितने असुर जो विक्षिप्त हो गए थे वो स्वस्थ हो गए, शरीर स्वस्थ हो गया, जो मर गए थे वो पुनः जीवित हो गए। ये बोलते अमृत दृष्टि, अरे क्या अमृत निकालेंगे, ये भगवान की अमृत दृष्टि का प्रभाव है। भगवान ने कोई निगाह हमारी दृष्टिपात किया बस, और सारे जो जिनको क्षति हुई थी शारीरिक क्षति वो स्वस्थ हो गए, जो मरे थे वो जीवित हो गए। इसीलिए हम लोगों को आचार्य बताते हैं कि प्रतिदिन भगवान के दर्शन करने मंदिरों में जाना चाहिए, भगवान का दर्शन करना जीव के लिए बहुत कल्याणकारी होता है। आचार्य बताते हैं कि भगवान के दर्शन मात्र से व्यक्ति की निर्धनता दूर हो जाती है, शरीर के रोग दूर हो जाते हैं, क्योंकि भगवान के वक्षस्थल पर कौन बैठी है, साक्षात लक्ष्मी जी बैठी हुई है। तो जब भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं, तो चूंकि आप लक्ष्मी जी के स्वामी को दर्शन कर रहे हो, लक्ष्मी जी कृपा स्वाभाविक ही मिलती है, मांगने की जरूरत भी नहीं है। तो भगवान के भजन करने से लक्ष्मी जी कृपा स्वतः ही आ रही है, निर्धनता स्वतः ही दूर होगी, शरीर के रोग स्वतः ही दूर होंगे, ये भगवान की दृष्टि का प्रभाव है। इसलिए भगवान के दर्शन करना जाना चाहिए, श्रद्धा के साथ जाना चाहिए, प्रतिदिन भगवान के दर्शन करना चाहिए। देखिए यहाँ पे सारे सुर असुर दोनों छत विछित थे, सबके स्वस्थ का मात्र दृष्टिपात से, कोई मेडिसिन नहीं लगाई है वहां पर, भगवान को पता भी चल गया कि ये लोग कर नहीं पाए, किसी ने मोबाइल मैसेज नहीं भेजा कि भगवान संभालो यहाँ तो हो नहीं रहा है हमसे, भगवान स्वतः ही आ गए। इस तरह से वो आए, भगवान ने मंदार पर्वत को बिठाया अपने गरुण देव के ऊपर, और असुरों को बिठाया, सुर को बिठाया, सबको उठा के भगवान ले चले, और एग्जैक्टली कहां पर ले गए उस पर्वत को, समुद्र के बीच में ऐसे भी जहां पे की मंथन होना था, वहां पे भगवान ने बड़ी सरलता के साथ उस पर्वत को रख दिया। अभी यहां पे प्रभुपाद जी बड़ी अच्छी बात बोल रहे हैं, वो बताते हैं कि देखिए कोई नास्तिक व्यक्ति अगर हो तो उसे विश्वास नहीं करेगा, वो कैसे कैसे उठा लिया उन्होंने तब। हाँ अच्छा, पर्वत भारी भी क्यों था मंदार पर्वत, क्योंकि मंदार पर्वत पत्थर का पर्वत नहीं था, वो सोने का पर्वत था, और सोना पत्थर से बहुत भारी होता है, आसान नहीं होता है, बहुत भारी होता है। तो भगवान ने ही ना उठाया, जैसे कि हाथी कोई गेंदे का फूल उठाया, ऐसे भगवान ने उठाया था। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य बोलते हैं, भक्त लोगों को सुनकर जरा भी आश्चर्य नहीं होगा, अरे जो भगवान करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड को हवा में उठाए हुए, हवा में तैर रहे हैं, और हर ब्रह्मांड में से हर ब्रह्मांड में मंदार पर्वत है, वो सब भगवान उठाए हुए हैं, तो भगवान के लिए छोटा सा मंदार पर्वत और असुरों को उठा के गरुण पर लेके जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कोई बहुत बड़ा चमत्कार का विषय नहीं है, आसानी से भगवान ने उठा लिया। तो भगवान बोलते हैं, प्रभुपाद जी तात्पर्य बोलते हैं, दुनिया में हर जगह दो तरह के दल है, हर जगह, हर सोसाइटी में, हर समाज में, हर देश में, एक ईश्वर विहीन दल है और एक ईश्वर के साथ वाला दल है, एक नास्तिक लोग हैं और एक आस्तिक लोग हैं। हर सोसाइटी में, हर समाज में मिलेंगे आपको, जो भगवान पर विश्वास नहीं करते, जो भगवान की लीलाओं पर विश्वास करते हैं, कार्यकलापों पर विश्वास करते हैं। अभी देखो सुर असुर दोनों एक ही काम कर रहे हैं, दोनों का लक्ष्य एक है समुद्र मंथन करना, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। क्या फर्क है, आचार्य बताते हैं कि सुर असुर समुद्र मंथन करेंगे किसकी शक्ति पर, स्वयं की शक्ति पर, स्वयं के बल पर। यह आसुरी मानसिकता होती है, आसुरी मानसिकता के लोग अपने स्वयं की शक्ति, अपने स्वयं के बल पर बड़ा विश्वास होता है, तभी बोलते हैं वो कर लो दुनिया मुट्ठी में, ऐसा बोलते हैं। भगवान का भक्त ऐसा नहीं होता है, भगवान का भक्त जो भी क्रिया करेगा, जो भी कार्य करेगा, भगवान की कृपा पर आश्रित रहकर करता है, वो जानता है कि मैं तो केवल निमित्त मात्र हूं, ये तो हरि इच्छा जो सब करवा रही है। तो इसी प्रकार से भगवान वहां जाते हैं, और जब भगवान वहां उतरते हैं तो इस आज के श्लोक में वर्णन है, सबको लेकर आते हैं, जब रख दिया जाता है मंदार पर्वत बीचों बीच में, तो भगवान गरुड़ देव को बोलते हैं अब आप चले जाइए। अरे ऐसा कैसा भाई, इतनी दूर से आप मुझे लेकर आए, मुझे लीला में उपयोग किया और आप बोल रहे आप चले जाइए। तो उसका उत्तर आप सब जानते हैं, क्यों, क्योंकि अगर गरुड़ देव वहां रहेंगे तो सर्पराज वासुकी नहीं आने वाले, क्योंकि गरुड़ देव प्रभुपाद जी लिख रहे हैं जो शाकाहारी नहीं है उनका सर्प उनका भोजन है, तो स्वाभाविक वो कहां से आएंगे। और वासुकी राज को जो है समुद्र मंथन में रस्सी के रूप में प्रयोग में आना है। तो इस तरह की सारी लीला यहाँ पर समाप्त होती है, यहीं पर अध्याय का अंत होता है। आगे फिर विष निकलेगा और शिव जी आएंगे, देवता लोग शिव जी के पास जाएंगे और शिव जी उस विष को ग्रहण करेंगे, तो आगे बड़े अच्छे अच्छे सुंदर श्लोक आएंगे जिसकी चर्चा आप लोग सुनेंगे। तो कम समय में हमने प्रयास किया कि पूरा अध्याय कवर कर दिया जाए, आशा है आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अरे